सभी भक्तों का हम स्वागत करना चाहेंगे आज के बहुत ही पावन अवसर पर श्रीमान गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस गौर पूर्णिमा इस वर्ष की। भगवान हर युग में अवतरित होते हैं और भगवान की विभिन्न लीलाएं होती हैं। अपने गुणों के अनुसार भगवान अपने पार्षदों के साथ अपनी लीला करते हैं और हर एक अवतार बहुत विशेष है भगवान का। परंतु गाया गया है अवतार सार गौर अवतार, परम करुणा पहुदुई जन निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंड। सभी अवतारों के शिरोमणि हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम गाते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पतेर गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कि वो करुणा के सिंधु हैं, भगवान श्री कृष्ण को करुणा का सिंधु बताया गया है। सिंधु का अर्थ है समुद्र सागर। तो कोई नमकीन पानी के सागर नहीं है, करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण। परंतु यदि हम समुद्र के स्वरूप को लें तो यदि कोई समुद्र है तो समुद्र का जल ग्रहण करने के लिए हमें समुद्र के तट पर जाना होगा। नासिक में समुद्र नहीं है, परंतु यदि आपको समुद्र का जल जो बंबई में है लेने जाने के लिए आपको चौपाटी जाना होगा, वो समुद्र का जल तो यहां पर नहीं आएगा हमारे पास। तो यदि भगवान श्री कृष्ण की तुलना उस समुद्र से की गई है जो करुणा के समुद्र हैं, परंतु इसमें भी इस उदाहरण में हम देखते हैं कि हमें जाना होगा वो करुणा लेने के लिए उस समुद्र के तट पर। परंतु श्रीमान गौरांग महाप्रभु इनके विषय में बताया गया है परम करुणा, कि ये केवल करुणा अवतार नहीं है बल्कि परम करुणा अवतार हैं। इसलिए यदि श्री कृष्ण की तुलना एक सिंधु से हम करें तो श्रीमान गौरांग महाप्रभु की तुलना उस बादल से करनी होगी जो उस समुद्र के ऊपर है। तो नासिक में या कोई भी जगह जहां पर समुद्र नहीं है वही समुद्र का जल कौन लेकर आता है? बादल। तो चैतन्य महाप्रभु उस बादल के समान हैं जो भगवान श्री कृष्ण के करुणा के समुद्र से वो जल लेकर उसे हम सब तक पहुंचाते हैं। तो समुद्र में और बादल में कौन कृपालु हुआ? बादल ज्यादा कृपालु हुआ। इसलिए कल हमने चर्चा की कि जब पंच तत्व इन्होंने निश्चय किया कि ये जो हरिनाम संकीर्तन का रस है नशा है ये हम सबको बांटना चाहते हैं, पात्र अपात्र न कहे विचार न देखी स्थान स्थान, ये भी नहीं देखा कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कौन सा स्थान योग्य है कौन सा स्थान अयोग्य है। जैसे बादल, फिर से वही उदाहरण हम लें, बादल नहीं देखता कि मैं वर्षा कर रहा हूं किसी पत्थर के ऊपर या उपजाऊ भूमि के ऊपर। वो बादल पत्थर के ऊपर जहां पर कुछ नहीं उगने वाला वहां पर भी अपनी वर्षा करता है और उपजाऊ भूमि पर भी। वो बादल ये नहीं देखता कि ये छतरी लिए मेरा जल नहीं लेना चाहता तो क्यों मैं इसे तकलीफ दूं। फिर भी बादल उस छतरी के ऊपर भी डालता रहता है। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु उस करुणा बादल के समान है, परम करुणा, जो कि वही सिंधु करुणा का भगवान श्री कृष्ण का हम तक बांट रहे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत विशेष है श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार। आज हम चैतन्य महाप्रभु की ये जो करुणा है, परम करुणा है, इसके विषय में चर्चा करेंगे इनके आविर्भाव के दिवस। और हम केवल एक श्लोक लेंगे जिसमें इनकी करुणा के विषय में वो तो नहीं कहते, परंतु कौन कहते हैं, उनके पार्षद। और उनके पार्षदों में बहुत ही मुख्य पार्षद हुए श्रीपाद रूप गोस्वामी। और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए एक सुंदर श्लोक कहा, उसकी रचना की। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तो मानो रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आकर हाथ जोड़कर ये श्लोक, ये प्रार्थना, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या वार्तालाप होता है, रूप गोस्वामी में और श्री चैतन्य महाप्रभु में। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे, क्यों भाई, मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हो? तो रूप गोस्वामी कहते हैं, महावदन्याय, मैं आपको इसलिए नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि आप केवल वदन्याय नहीं हो। वदन्याय का अर्थ क्या होता है? जो बहुत दानवीर हो। तो बहुत दानवीर व्यक्ति को वदन्याय कहा जाता है। परंतु यहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं इसलिए आपको नमस्कार कर रहा हूं कि आप महावदन्याय हो, महादानवीर। अब देखिए, कोई व्यक्ति दानशूर क्यों कहलाता है? जब वो किसी दूसरे व्यक्ति कि इतनी योग्यता न देखते हुए, जैसे कोई भिखारी को दान देता है या किसी अनाथालय में दान देता है या कहीं पर भी दान दे, तो वो दान देता है क्योंकि अगला व्यक्ति योग्य नहीं है कुछ करने के, इसलिए उसे दान दिया जाता है। अब यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे महावदन्याय हैं, इसका विश्लेषण कर देखें, तो सबसे पहले हमारी स्थिति क्या है, हमारी योग्यता को देखना होगा। दो मुद्दे इसमें देखने होंगे, एक तो क्या दान मिल रहा है हमें और हमारी योग्यता क्या है। अब मान लो इसमें से यदि एक भी मुद्दे को हम ठीक से नहीं समझें तो महावदन्याय इनका गुण नहीं समझ में आएगा। कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति यदि करोड़पति है परंतु किसी को केवल एक रुपया दे रहा है, तो दानी तो है परंतु उसकी स्थिति को देखते हुए वो केवल एक रुपया दे रहा है, तो उसे महादानी कोई नहीं कहेगा। इसे एक बार मुंबई में एक घटना हुई, एक बहुत बड़ा व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठा हुआ, सिग्नल पर गाड़ी लगी तो बंबई के भिखारी वो सिग्नल पर तैयार रहते हैं, तो जैसे ही वहां रेड सिग्नल होता है तो इनका ग्रीन सिग्नल होता है, ये शुरू होते हैं। तो एक भिखारी अपना कटोरा आगे लिए, भगवान के लिए कुछ दे दे बाबा। तो ज्यादातर एक बहुत ही प्रसिद्ध बहाना भिखारियों को भगाने का क्या है भारत में? छुट्टा नहीं है, है ना? तो जैसे इसने कटोरा आगे किया, अब ये आलिशान अपनी गाड़ी में बैठा हुआ ये बहुत बड़ा व्यक्ति प्रतीत हो रहा था, तो इसने कांच नीचे करते हुए कहा, जाओ जाओ, छुट्टा नहीं है। अब ये भिखारी, इसे लगा कि इतनी बड़ी गाड़ी में ये बैठा, इतना बड़ा, इतने पैसे इसके पास होंगे और मैं क्या मांग रहा हूं? ये कहता छुट्टा नहीं। तो इसने भी फिर उससे कहा, छुट्टा नहीं है, ये ले। अपने कटोरे से निकाला 50 पैसा, ये ले छुट्टा, जा। तो अब यहां पर ये महादानी नहीं कहलाए जाएगा, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, परंतु वो भिखारी कहलाए जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो 50 पैसा बहुत है, वो छुट्टे पैसे। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए, कौन सा दान देने आए, उसका मूल्य यदि हम लगाएं तब समझ में आएगा कि वो महावदन्य आए हैं। और दूसरी बात, हमारी क्या योग्यता उस दान को ग्रहण करने की। सुबह ही हमने सुना, प्राण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रित, कि कलयुग में सब कुछ मंद, मंदी, रिसेशन, सब कुछ मंदी है। हमारी स्मृति, आयु, बल, सब कुछ मंद। और इतना ही नहीं कि ये सब कुछ मंद, भाग्य भी मंद। यदि ठीक है आयु, स्मृति, बल, ये सब क्षीण हो रहा है, परंतु कम से कम यदि भाग्य तो थोड़ा हमारा होता, तो कलयुग में यदि किसी को आध्यात्म के पथ पर भी आना है तो इतने सारे तथा कथित हैं अपने आप को भगवान कहने वाले जो लोगों को भ्रमित करने के लिए तैयार हैं। मंद भाग्य। तो यदि हमारी योग्यता हम दे, और इसके ऊपर भी कलयुग का निवासी बहुत गर्वित रहता है, अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता है कि मैं देखो जो भी हूं, जितना भी मंदी मेरे अंदर है, परंतु हूं तो कलयुग का। तो यदि भिखारी में योग्यता नहीं है, उसकी भी योग्यता चाहिए। अब भिखारी की क्या योग्यता होती है? जितना ज्यादा वो दयनीय स्थिति में है वो उसकी योग्यता। अब यदि सूट बूट में वो भीख मांगने जाए कटोरा लेके, हाँ? अपना हीरे मोती जड़ा हुआ एक कटोरा और सूट बूट पहना हुआ यदि इस प्रकार से वो भीख मांगने जाए तो क्या मिलेगा उसे? तो भिखारी की योग्यता क्या होती है? जितना ज्यादा वो दयनीय स्थिति में अपने आप को प्रस्तुत करे। जैसे एक बार एक बड़ा उद्योगपति, वो रोज अपने ऑफिस में जाते समय एक भिखारी को वो रास्ते में देखता मोड़ पर, और रोज उसे 5 रुपया देता, काफी, 5 रुपया रोज वो भी भिखारी को देना, तो रोज 5 रुपया देता। तो हुआ ऐसा कि एक हफ्ते के लिए वो कहीं ड्यूटी पर बाहर गया अपने बिजनेस टूर पर, तो एक हफ्ता वो नहीं था। एक हफ्ते बाद फिर फिर से जब अपने ऑफिस जा रहा था तो भिखारी कटोरा लेकर आया 35 रुपया। तो उसने कहा किसके 35 रुपया भाई, अरे रोज के 5 रुपया, 7 दिन नहीं थे ना, चल भाग, ये क्या, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं। तो ये अपनी योग्यता खो बैठा। तो हमारी योग्यता क्या है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो हमें देने आए, सबसे बड़ा दान करने आए, तो यदि ये हम सब देखेंगे, उनका दान और हमारी योग्यता, इसमें भी जब वो लेकर आते हैं तो हम अलग अलग तरीके से अपना चयन करते हैं। यदि भिखारी चयन करने लग जाए, जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में हर रात को जो भी रात का प्रसाद होता है वो बांटने के लिए बाबुलनाथ के पास जो भिखारी बैठते हैं उधर बांटते हैं। कई बार जो हम प्रचारक भी लेट आ गए तो हमको भी प्लेट लेके वहीं पे बैठना पड़ता है, ऐसा हुआ है। 8 बजे का टाइम है, रात के 8 बजे तक यदि कोई आया नहीं ब्रह्मचारी भी, तो उसे भी बाबुलनाथ प्लेट लेके जाना पड़ता है, और गए भी हैं हम लोग। अब ये रोज वहां पर प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहां पर ये सारे भिखारी जानते हैं मेनू क्या है, कौन से दिन क्या रहता है, वो सब जानते हैं। तो यदि किसी कारणवश 2-3 दिन यदि खिचड़ी बनी रात को, तो कई बार ये भिखारी बोलते क्या 3 दिन से खिचड़ी बना रहे हो, ये भिखारी इतना बाकी रह गया है कि इनको मेनू कार्ड हाथ में दे और फिर ये, और कई लोग लेते नहीं, बोलते क्या खिचड़ी, नहीं खिचड़ी नहीं, कुछ सांबर दाल वगैरह या चावल ये सब है। तो देखिए यहां पर ये चयन शुरू कर दिया इन्होंने। तो जब रूप गोस्वामी कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को कि आप महावदन्याय हैं, तो ये दो सिद्धांत समझने होंगे कि वो क्या हमें दान में दे रहे हैं और हमारी क्या योग्यता है। तो मानो चैतन्य महाप्रभु पूछे कि अरे भाई मैं तो एक विरक्त सन्यासी हूं, एक सन्यासी क्या दान दे सकता है, और वो भी आप कह रहे हो महावदन्याय हूं मैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, ये सबसे बड़ा दान आप दे रहे हैं। अब यदि हम एक पलड़े पर जो भी मूल्यवान वस्तु है इस संसार की रखें और दूसरे पलड़े पर कृष्ण प्रेम रखें, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? कृष्ण प्रेम का। तो ये कृष्ण प्रेम का दान देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। रूप गोस्वामी कहते हैं इसलिए आप महावदन्याय हैं। अच्छा, कृष्ण प्रेम तो कृष्ण ने भी दिया द्वापर युग में, तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की क्या ऐसी विशेषता है? तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप साधारण कृष्ण प्रेम नहीं बांटने आए हो, आप वो कृष्ण प्रेम बांटने आए हो जो कि श्रीमती राधा रानी के हृदय में है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण के कितने अनगिनत भक्त हैं, इतने अनगिनत भक्तों में से सबसे ज्यादा गाढ़ कृष्ण प्रेम है श्रीमती राधा रानी का। तो यदि भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु अपने इतने सारे भक्तों में से किसी एक भक्त का कृष्ण प्रेम बांटने आते तो वो महावदन्याय नहीं कहलाते, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसके तुलना में किसी का प्रेम नहीं। जैसे कि यदि हम ये उदाहरण लें, आपको किसी को अंगूर भेंट करना है, तो अंगूर तो बहुत जगह पर मिलते हैं लेकिन नासिक के अंगूर वो विशेष है ना, तो नासिक के अंगूर विशेष हैं। तो यदि आप किसी को भेंट देने जाओ और कहो ये अंगूर नासिक के हैं, अरे वाह क्या बात है, और कल ही मुझे जुगल किशोर प्रभु बता रहे थे कि अब एक नया अंगूर का स्पीशीज निकला है, जिसमें वो जो अंगूर की जो क्या बोलते हैं उसे, वेल वेल, उसके जड़ में लीची का जूस पानी के बदले, लीची आप जानते, लीच नहीं लीची, दोनों में बहुत अंतर है, तो लीची का जूस, तो वो जो अंगूर है उसमें लीची और अंगूर की मिठास, कल्पना कीजिए अंगूर और लीची का पंच। तो चैतन्य महाप्रभु हैं क्या? राधा कृष्ण ना ही अन्य, राधा और कृष्ण दोनों, लीची अंगूर दोनों। तो यदि किसी को अंगूर, यदि किसी को संतरा आपको भेंट करना है तो कहां का होना चाहिए? नागपुर का अंगूर, नासिक का संतरा, नागपुर का मंत्रा, गोलोक वृंदावन का। आम, आम कहां के होते हैं? रत्नागिरी, आम रत्नागिरी के। तो अब देखिए, उसी प्रकार से यदि कृष्ण प्रेम किसी का हम कहें तो श्रीमती राधा रानी का। राधा भाव द्युति सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, कि वो श्रीमती राधा रानी का भाव जो भगवान कृष्ण के प्रति वो देने आए, इसलिए महावदन्य आए। कि सभी आध्यात्मिक पथ में से जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति है, उसमें भी श्रीमती राधा रानी की जो प्रेमा भक्ति है वो देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए महावदन्य आए। तो मानो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे रूप गोस्वामी से कि भाई कृष्ण प्रेम तो कृष्ण देंगे ना, वो तो कृष्ण वो देंगे, उनका प्रॉपर्टी है। जैसे यदि आपको मारुति गाड़ी खरीदनी है तो आप कहां जाएंगे? मारुति के शोरूम में जाएंगे। तो मानो भगवान इस प्रकार से रूप गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि अरे भाई कृष्ण प्रेम उसका स्टॉक तो कृष्ण के पास होगा, मैं कैसे दे सकता हूं? यहां पे देखिए गौर करने लायक है ये बात कि स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, और कलयुग में कल का पैदा हुआ अपने आप को भगवान बोल रहा है। कोई मुझे हाल में बता रहा था कि आजकल एक नए हैं दादा भगवान, कोई दादा भगवान है, कोई बाबा भगवान है। यहां पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं हूं कृष्ण, ये उनकी नम्रता। तो रूप गोस्वामी तुरंत कहते हैं नहीं, कृष्णाय, श्लोक में आगे कहते हैं आप ही हैं वो कृष्ण। अब देखिए ये गौर करने वाली बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और चैतन्य भागवत में इसके विषय में बताया गया है कि एक दिन शची माता, वो निमाय, जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया उससे पहले निमाय, निमाय पंडित वही श्री चैतन्य महाप्रभु, तो शची माता निमाय को कहती है कि कल रात मुझे एक ऐसा स्वप्न आया, बहुत ही विचित्र स्वप्न था। तो निमाय अपनी माता से पूछते हैं क्या स्वप्न आया ऐसा विचित्र? शची माता ने कहा कि सपने में तुम और वो निताई, तुम दोनों हमारे घर के जो अर्च विग्रह हैं कृष्ण बलराम, उनके साथ झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों। तो शची माता के घर के अर्च विग्रह कृष्ण बलराम, और यहां पर निमाई और निताई सची माता के सपने में झगड़ा कर रहे हैं कृष्ण और बलराम से। देखिए क्या मैच है। तो निमाय पंडित पूछते हैं क्यों झगड़ा कर रहे थे हम लोग और कैसे कर रहे थे। तो सची माता कही कि तुम्हारे हाथ में बलराम जी का विग्रह तुमने लिया था और वो निताई उसने कृष्ण का विग्रह हाथ में लिया और ऑल्टर से कृष्ण बलराम को तुम दोनों बाहर ले जा रहे हो और कृष्ण बलराम झगड़ा करते हुए चिल्ला रहे हैं कहां ले जा रहे हो हमें, ये हमारा ऑल्टर है। तो तुम तो इतना कुछ नहीं बोल रहे थे, वो निताई बहुत बोल रहा था। वो निताई कृष्ण को कहा भर गए तुम्हारे दिन, बहुत हो गया, ये कलयुग है और ये कलयुग के युग अवतार हैं ये श्रीमान गौरांग महाप्रभु, चलो अब यहां से ऑल्टर खाली करो। ऐसी बात ही ऐसी भाषा बोल रहा है निताई। और फिर जो मैंने भोग चढ़ाया था तुम चार कृष्ण बलराम और तुम दोनों झगड़ा छीन रहे हो। ओ कृष्ण बलराम जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे हैं अरे ये हमारा भोग है, सच्ची माता ने हमारे लिए लगाया, बीच में हाथ मत डालो। और वो निताई सुन ही नहीं रहा, वो बोलता है कृष्ण बलराम को चुप्पी करके बैठो, ये सब हमारा। ऐसा झगड़ा चल रहा था और उसमें फिर निताई जोर से चिल्लाया कि मुझे भूख लगी है सच्ची माता और कुछ लाओ। और तभी मेरी आंख खुली, स्वप्न टूटा। तो अब सच्ची माता ने कहा कि कैसे मैं इसे समझूं। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे और चैतन्य महाप्रभु फिर कहे कि क्योंकि निताई ने बुलाया पुकारा भोजन के लिए और चाहिए कुछ तो तुम्हें भोजन के लिए बुलाना चाहिए निताई को। तो फिर चैतन्य महाप्रभु गए नित्यानंद प्रभु को बुलाने के लिए, आमंत्रण देने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु बहुत खुशी खुशी राजी खुशी आ रहे थे। तो अब रास्ते में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि देखो मेरे घर में मेरी माता है, वृद्ध माता है, मेरी सुशील पत्नी है, तो थोड़ा ठीक से बिहेव करना। तो नित्यानंद प्रभु क्या मतलब है, क्या मैं ठीक से बिहेव नहीं करता, क्या मेरा दुर्व्यवहार देखा कभी? नहीं नहीं कभी नहीं देखा, फिर भी चेतावनी दे रहा। तो ऐसे मजाक करते हुए पहुंचे और वहां पर सच्ची माता ने इनके लिए फीस्ट बनाया हुआ था। तो सच्ची माता अब वो किचन से ला रही थी एक एक व्यंजन, तो देखा जब गौर निताई बैठकर प्रसाद ले रहे थे, तो जब रसोई घर में गई कुछ लाने के लिए तो अपनी आंखों से क्या देखती है कि गौर निताई परिवर्तित हो गए उनके कृष्ण बलराम में, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण में परिवर्तित हो गए और नित्यानंद प्रभु बलराम जी में। और सची माता आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी, तो हाथ में जो कुछ था वो भी हाथ से गिरा, सची माता बेहोश होकर नीचे। और तुरंत फिर गौर निताय कृष्ण बलराम एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसते हुए सची माता को फिर से होश में लाते हैं। तो इस कथा से ये सिद्ध हुआ कि कृष्णाय वही हैं, वही श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। तो मानो अब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से पूछें कि भाई कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं, मेरा वर्ण देखो मैं तो गौर वर्ण का हूं, तो कैसे ये मेल फिर से समझ में आएगा कि तुम कहते हो कि मैं कृष्ण हूं और कहते हो वही कृष्णा या कृष्ण चैतन्य वो नाम है, परंतु भाई दिखने में तो होना चाहिए ना, दिखने में कहां दिखता हूं मैं कृष्ण की तरह। तो रूप गोस्वामी कहते हैं हालांकि आपका वर्ण कृष्ण की तरह नहीं होगा, गौर होगा, गौरत्विषे, परंतु जो शुद्ध भक्त हैं आपके या कृष्ण के, वो पहचान लेते हैं आपको। ये उदाहरण दिया गया है, बहुत सुंदर उदाहरण है कि जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है, मालिक चाहे कोई भी वेश में आए कुत्ता पहचान लेता है। कुत्ता जो है वो दुम हिलाते हुए तुरंत मालिक को पहचान लेता है। कैसे पहचानता है कुत्ता? सूंघकर। चाहे मालिक कहीं दूर भी हो तो कुत्ता सूंघकर पहचान लेता है कि ये मेरे मालिक की गंध है। एक बहुत ही सुंदर कथा है इसके संदर्भ में। श्रीरंगम में जो रंगनाथ जी हैं, एक समय ऐसा था जब मुसलमानों का आक्रमण उस क्षेत्र में होने वाला था, तो रंगनाथ जी के अर्च विग्रह को कर्नाटक में वो छुपाए, कोलार देश में, और फिर बहुत समय तक रंगनाथ जी वहां पर छिपे हुए थे। कई 50-60-70 वर्ष बीत गए और श्रीरंगम में अब रंगनाथ जी को कोई पहचानता तक नहीं, किसे याद भी नहीं कि श्रीरंगम ये रंगनाथ जी के वजह से है, तो सभी भूल गए। फिर रामानुज संप्रदाय के जो श्री वैष्णव, वो चाहते थे कि पुनः रंगनाथ जी को वहीं पर स्थापित होना चाहिए, तो वो रंगनाथ जी को फिर से श्रीरंगम लाने के प्रयास में थे, परंतु श्रीरंगम के जो लोग थे वो कहे कि हम कैसे पहचाने कि ये ओरिजिनल है, हम कोई भी मूर्ति बनाकर लाए होगे, कहोगे कि ये रंगनाथ जी हैं, हम क्यों लें? तो अब ये समस्या सामने थी कि कैसे कोई पहचाने इनको, क्योंकि उस समय का तो कोई था नहीं। तो उन्होंने पता लगाया कि एक वृद्ध व्यक्ति अब तक जीवित था उस समय का जब रंगनाथ जी को श्रीरंगम से कर्नाटक ले जाया गया, तो वो वृद्ध व्यक्ति को कहीं से तो ढूंढा रंग क्षेत्र में और उस वृद्ध व्यक्ति को लेकर आए, परंतु वो वृद्ध व्यक्ति अब ऐसी अवस्था में था कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो वो कैसे देखता और कैसे पहचानता? तो अभी एक और समस्या। तो इस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि चिंता मत करो, हालांकि मैं आंखों से देख नहीं सकता, परंतु फिर भी जो भी अर्च विग्रह है तुम कहते हो ये रंगनाथ जी का है, मैं पहचान लूंगा, क्योंकि वो रंगनाथ जी का धोबी था उस अपने युवावस्था में, रंगनाथ जी के कपड़े धोया करता था। तो उसने कहा कि अर्च विग्रह को लाओ, और एक कपड़ा लिया और उसने कहा पुजारी से कि इसे छाती पर रगड़ो उनके। तो छाती पर रगड़ा और रगड़कर इस वृद्ध व्यक्ति ने वो कपड़ा सूंघा खाली। सूंघते ही उछल कर कहा यही है रंगनाथ जी। उसने इतने वर्ष पूर्व रंगनाथ जी के गंध को पहचान लिया, जैसे कि एक कुत्ता मालिक के गंध को पहचान लेता है, चाहे मालिक कितने भी समय बाद आए, चाहे मालिक कौन से भी वेश में आए। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण गौर वेश में, गौरांग उनके अंग गौर वर्ण के, परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम आपको पहचान रहे हैं। तो भगवान तो प्रामाणिक हैं अपने इस अवतार में, प्रश्न है क्या हम प्रामाणिक कुत्ते हैं उनके? क्योंकि यदि कुत्ता प्रामाणिक नहीं होगा तो वो नहीं पहचान पाएगा। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को बोल रहा था गुणगान करते हुए, तुहार चेहरा मोती समान, तो हर बार अपनी प्रेमिका को इस प्रकार से कहता, रोज दो तीन बार, तो हर चेहरा मोती समान। तो इसने फिर बहुत बार सुन लिया तो पूछा कि भाई ऐसा क्या मेरे चेहरे में इतना दिखता है कि मोती समान। तुमने कभी मोती देखा है क्या? तो इसने कहा, नहीं मैंने तो कभी देखा नहीं। तो तुम रोज बोलते हो तुहार चेहरा मोती समान। हां मेरे कुत्ते का नाम मोती है। तो यहां किसी का चेहरा या पता नहीं उसका चेहरा इसके समान या इसका चेहरा उसके समान, परंतु यहां पर जब हम इस उदाहरण को ले रहे हैं कि जैसे, और ये हमारे आचार्यों ने ये उदाहरण दिया है, भक्ति विनोद ठाकुर वो कहे हैं, आमी तो तोमार कुकुर। कुकुर का अर्थ क्या है? कुत्ता। और प्रभुपाद कहा करते थे ये है हमारा पट्टा, ये पट्टा है और ये क्या संकेत दे रहा है कि हम पालतू हैं। ये पट्टा नहीं होता है तो कुत्ते का पट्टा नहीं होता है तो गली का होता है, वो कोई मालिक नहीं, परंतु प्रभुपाद कहा करते थे हम पालतू हैं। और कौन हमारे मालिक हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पर रूप गोस्वामी यही बोल रहे हैं कि हालांकि आपका वर्ण होगा गौर वर्ण, परंतु आप ही वो कृष्ण हो, गौरत्विषे नमो नमः। इसलिए मैं आपको नमन कर रहा हूं हे श्रीमान गौरांग महाप्रभु। देखिए भगवान बहुत ही विशेष वर्ण लेकर आए हम कलयुग निवासियों के लिए, कलयुग में गौर वर्ण। गौर वर्ण का अर्थ है सोने, तपते हुए सोने की कांति लिए हुए, तप्त कांचन गौरांगी, क्योंकि गौरांगी किसका नाम है? श्रीमती राधा रानी का, तो उनका वर्ण लिए हुए गौरांग। क्योंकि कलयुग में कली निवास कहां करता है? सोने में, गोल्ड, कली वहां निवास करता है। तो चैतन्य महाप्रभु जान लिए कि कलयुग के जो निवासी हैं वो सोने के पीछे भागते रहते हैं। सोने का दो अर्थ होता है, दोनों। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए उस वर्ण में आए ताकि हम लोग जो इतने आकर्षित रहते हैं उससे, उस कलर से, तो चैतन्य महाप्रभु हमें आकर्षित करें सबसे पहले अपने वर्ण से, और फिर भाव दिखाया श्रीमती राधा रानी के कृष्ण प्रेम का भाव। अब इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहें, तो रूप गोस्वामी कहते हैं इसीलिए आप हो महावदन्याय, कृष्ण प्रेम प्रदान करने, वो भी राधा रानी के हृदय के कृष्ण प्रेम को, और आप ही हैं वो कृष्ण, हालांकि आपका वर्ण अलग होगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का गुणगान करते हुए आगे कहते हैं कि हमारी स्थिति क्या है कलयुग में, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाते हैं। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार। चैतन्य महाप्रभु की तुलना यहां पर एक सिंह से की गई है। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं एक सिंह के रूप में। सिंह ग्रीव की उनकी जो ग्रीवा है वो सिंह के समान, सिंह वीर्य और उनका जो वीर तेज है वो एक सिंह के समान, और हुंकार उनकी जो हुंकार है वो सिंह के समान। तो क्यों सिंह से चैतन्य महाप्रभु की तुलना की गई है। आगे वो कहते हैं, सेई सिंह वसुक जीवेर हृदय कंडरे कलमश द्विरड़ नाशे याहार हुंकारे। वो कहते हैं कि सिंह वो ज्यादा कर कहां पर रहता है, सिंह का निवास स्थान क्या है? गुफा, हाँ केव, एक गुफा में सिंह रहता है। तो यदि हम सिंह के कॉम में जाएं, उनके कम्युनिटी में जाएं, तो जैसे कि हम मनुष्यों की कम्युनिटी हमारे समाज में देखा जाता है कि किसका बंगला किसका घर आलीशान है, पॉश किसका है, देखा जाता है ना। तो यदि जंगल में जाकर सिंहों के कम्युनिटी में पूछा जाए कि सबसे आलीशान गुफा किसकी है, तो गुफा में आलीशान गुफा कैसे समझी जाए? जिसमें सबसे ज्यादा अंधेरा हो, जो सबसे ज्यादा गहरी और अंधेरी गुफा, वो पॉश, सबसे आलीशान गुफा। तो यदि चैतन्य महाप्रभु एक सिंह की समान हैं, तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु सिंह के समान कौन सी गुफा ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, जो सबसे गहरी और अंधेरी, और वो कहां पर उनको मिलेगी? कलयुग के जो निवासी हैं उनके हृदय, हमारे जो हृदय हैं इससे ज्यादा अंधेरा चैतन्य महाप्रभु जैसे सिंह को और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है हृदय कंदरे, ये हृदय की तुलना उस कंदरा उस गुफा से की गई है जो सबसे ज्यादा अंधेरी है। इसलिए चैतन्य सिंह अवतरित हुए हैं, और वो भी चैतन्य सिंह अवतरित हुए हैं ऐसा नहीं कि इस गुफा को अंधेरी ही छोड़ देने के लिए या अंधेरा ही छोड़ देने के लिए, इस गुफा को प्रकाशमान करने के लिए, दैदीप्यमान इस गुफा को करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं, पांच पांच तत्वों के साथ इस पूरी गुफा को दैदीप्यमान करने के लिए आए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु और कोई नहीं कि जो ढूंढ रहे हैं अंधेरी से अंधेरी गुफा। तो इसके संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर भजन है जो हम गाना चाहेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो परम कृपालु दयालु हैं उनके संदर्भ में, जहां पर बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जैसे दयालु और कोई नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमार मां, यहां पर हमारे हृदय और मन की तुलना उस गुफा से की गई जो इतनी अंधेरी है, परंतु दयाल निताय उस गुफा में अवतरित हुए और इसलिए नाच रहे हमार मन, वो हृदय हमारा नाचने लगा है, वो गुफा अंधेरी वो नाचने लगी है। तो इसलिए बैठे बैठे हमें अपने मन को नचाना है, और वो मन कब नाचेगा? जब हम श्रीमान गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अनुमति देंगे हमारे इस कंदरा में, हृदय कंदरा में प्रवेश करने के लिए। कम से कम उसे बंद तो न करें, हम उन्हें आने की अनुमति दें। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमार मां, नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, ओ नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, मार खे प्रेम दे, दयाल तो नहीं है, ओरे अपराध दूरे जाबे पाबे प्रेम धा, ओरे अपराध दूरे जाबे पाबे प्रेम धा, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, ओ नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, बोलो नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है, ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है, तकुन कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बे बंधा, तकुन कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बे बंधा, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, ए नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, बोलो नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे आमार मा, अनुराग तो हबे है, अनुराग तो हबे है, कृष्ण नामे अनुराग तो हबे है, तखुन अनायासे सफल हबे जीवे रजीवा, तखुन अनायासे सफल हबे जीवे रजीवा, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे आमार मा, ओ नाच रे आमार मा, नाच रे आमार मन, बोलो नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन,
দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মা, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মা। জীবন তো মিছে হে, জীবন তো মিছে হে, কৃষ্ণ রতি বিনা জীবন তো মিছে হে। কৃষ্ণ রতি বিনা জীবন তো মিছে হে। শেষে বৃন্দাবনে রাধা শ্যামের পাবে দর্শন, শেষে বৃন্দাবনে রাধা শ্যামের পাবে দর্শন। গৌর কৃপা হলে, গৌর কৃপা হলে, গৌর কৃপা হলে নিতাই, গৌর কৃপা হলে, 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 গৌর কৃপা হলে নিতাই, গৌর কৃপা হলে বলো, গৌর কৃপা হলে, গৌর কৃপা হলে, গৌর কৃপা হলে নিতাই, গৌর কৃপা হলে জয় গৌরনিতাই, 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 জয় গৌরনিতাই। হরি বল, হরি বল, হরি বল, তাই গৌর হরি বল। দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মা, চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার, সিংহ গ্রীব সিংহ বীর্য সিংহের হুঙ্কার। চৈতন্য মহাপ্রভু সিংহ রাশি মে অবতরিত হুয়ে আজ কে দিন, ইসলিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি যো কৃপা হ্যায় উসকি তুলনা এক সিংহনি কে দুধ সে কি গই, মিল্ক অফ আ লায়নেস। এক বহুত হি সুন্দর উদাহরণ সে বতায়া গয়া হ্যায় কি जो सिंह का दूध होता है या सिंहनी का दूध होता है वो किसी भी पात्र में नहीं रखा जाता। किसी भी पात्र में यदि उसे रख दो, यदि मटके के पात्र में उसे रखो तो मटके फूट जाएगा, इतना शक्तिशाली होता है वो दूध। इसलिए एक विशेष पात्र में ही उसे रखा जाना चाहिए, उस दूध को सोने के पात्र में। तो यदि हमारे हृदय की तुलना पात्र से की जाए और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा उस सिंहनी के दूध से की जाए, तो प्रश्न है कि ये जो हमारा हृदय रूपी पात्र है ये कौन से तत्वों से बना है, कौन से तत्व हैं जो कि इस पात्र को इतना सुदृढ़ बनाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम इसमें समा सके। चार पदार्थों से ये हमारा हृदय रूपी पात्र बनता है और वो है तृणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिन मानदेन। ये चार वस्तुएं हैं, तृण से भी अधिक नम्र, एक वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, दूसरों को सदा मान देने वाला व्यक्ति और स्वयं के लिए कोई मान की अपेक्षा नहीं करते हुए, इन चार पदार्थों से जब हमारा हृदय रूपी पात्र बनेगा, इसके मिक्सचर से, तब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो कि उस सिंहनी के दूध के समान है उसमें टिक पाएगी। और आगे कहा गया है कि इस पात्र में नीचे यदि छिद्र हो तो चाहे कितना भी दूध ऊपर से डालो बह जाएगा, यदि छिद्र है नीचे तो। ये छिद्र कितने हैं और कौन से हैं? 6 छिद्र बताए गए हैं। हमारे जो अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सारे जो हमारे अनर्थ हैं षड रिपु, ये उस छिद्र के समान है। तो ऊपर से चाहे कितनी भी कृपा आती जाए नीचे से बहती जाएगी। तो इन छिद्रों को बंद करना है। कम से कम पात्र को उल्टा तो नहीं रखे। कलयुग के बहुत से दुर्भाग्यशाली जीव हैं जो पात्र को उल्टा रखे हैं। तो यदि पात्र को उल्टा रखो तो क्या क्या गति होगी फिर? तो इसलिए यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत ही विशेष बताई गई है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा और श्रीपाद रूप गोस्वामी द्वारा। और कलयुग बहुत ही खतरनाक युग भी बताया गया है। तो इस खतरनाक युग में यहां पर पदम पदम यद विपदा, हर पग पर विपदा है। हाल ही में मुझे एक भक्त के विषय में बताया जा रहा था कि ये भक्त, इनका देखिए विपदा हर पग में कैसे है। ये भक्त, इनका विवाह समारोह हो रहा था और विवाह समारोह में जब वो फेरे लेते हैं तो वो जो वधू जिनसे विवाह हो रहा था वो 5वें या 6ठे फेरे में उनको कुछ अटैक आया और वहीं पर गिर गई। और पिछले 2 साल से वो अब बेड रेस्ट पर है। किसी ने कल्पना भी नहीं की कि ऐसे जगह पर ऐसे समय पर इस प्रकार की विपदा भी किसी के जीवन में आ सकती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हम कलयुग निवासियों के लिए बहुत ही विशेष है। यदि हम और किसी की आराधना नहीं करें, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण जाएं, तो सारे अवतारों के ये शिरोमणि और सार। एक बहुत ही सुंदर श्लोक में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का यदि केवल कोई स्मरण कर ले, जैसे आज हम पूरे दिन भर उनका स्मरण करने में बिताए हैं, यदि केवल कोई स्मरण कर ले तो क्या होगा? कथंचन स्मृते अस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत, विस्मरते विपरीताम स्यत् श्री चैतन्य नमामितम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कथंचन स्मृते, यदि कोई किसी भी तरीके से स्मरण करता है श्री चैतन्य महाप्रभु का तो दुष्कर, जो भी कार्य दुष्कर हो वो बहुत ही सरल हो जाता है। दुष्करम सुकरम भवेत। अब क्या हमने अनुभव किया है हमारे जीवन में दुष्कर कार्य आते हैं या आए थे या आए हुए हैं या आएंगे? हां या ना? नहीं। आप समझे दुष्कर का अर्थ है कि, दुष्कर का अर्थ समझते हैं? मेरे ख्याल से आप लोग सब इसके परे हैं। खैर मैं अपने लिए कहता हूं, बहुत ही दुष्कर कार्यों से गुजरना पड़ता है इस संसार में कि जो हमारे हाथ में नहीं है। परंतु यदि श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर ले तो दुष्कर्म सुकर्म भवेत। और विस्मृते, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की विस्मृति हो जाए किसी को, तो जो सबसे सरल से सरल कोई स्थिति या कार्य होगा वो दुष्कर बन जाता है। उल्टा भी है, माइनस पॉइंट भी मिलता है। एक हमारे इस्कॉन के बुक डिस्ट्रीब्यूटर, वो पाश्चात्य देश में एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो भगवद गीता बांट रहे थे और वहां पर बहुत सी सिक्योरिटी थी, तो अलाउड नहीं था ऐसे ही कोई भी जाकर पुस्तक वितरित करे, और वो भी आध्यात्म भगवद गीता। तो ये छिप के पुस्तक वितरित कर रहे थे, छिपते छिपाते सिक्योरिटी से, पुलिस से। तो पुलिस ने जान लिया कि ये कोई हरे कृष्ण वाला यहां पर पुस्तक वितरित कर रहा है, उनके कैमरा, हिडन कैमरा और इन सब से पता लगा लिया। तो दो पुलिस पीछे लगे, तो ये दो पुलिस अब ये समझ गए, ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर, ये भक्त समझ गए कि ये पुलिस हैं, ये मेरे पीछे भाग रहे हैं। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर अब भागना शुरू किए। अब देखिए, पुलिस पीछे, ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर आगे आगे भाग रहे हैं। चोर पुलिस, तो पुलिस भाग रही है और ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर, हालांकि माखन चोर जो हैं उनके विषय में पुस्तक वितरित कर रहे थे, तो इस भौतिक संसार के पुलिस क्या समझेंगे। तो भाग रहे इसके पीछे। तो अब ये भागते भागते ये वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, इन्हें पता नहीं कहां भाग रहे हैं, ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता नहीं कि जहां पर रास्ता कुछ दिखता, कोई लेफ्ट टर्न दिखता, कोई राइट टर्न, भागते। और ये पुलिस भी पीछे पीछे भाग रहे। ये भागते हुए एक ऐसा कॉरिडोर सा आया, तो वो वरांडा कॉरिडोर में भागने लगे और सामने एक दरवाजा था बड़ा, तो ये दरवाजे के अंदर घुस गए। जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसे तो देखा कि बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, वो उसका दरवाजा था और सैकड़ों की संख्या में वहां पर पब्लिक जमा हुई, ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी। और जैसे ही ये घुसे तो सब पीछे मुड़कर इनकी तरफ देखे। तो अब ये हांफते हुए सभी इनकी तरफ देख रहे हैं, ये रुक गए। और फिर स्टेज से, जो वहां के ऑर्गेनाइजर जो भी थे, वो स्टेज से उतर कर आए और वो सबको अनाउंस किए, फाइनली अवर चीफ गेस्ट हैज कम। तो पुलिस पीछे वो भी रुक गया, अनाउंसमेंट सुनता, उसने भी सुना, वो भी रुक गया। तो अब ये ऑर्गेनाइजर ने ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर को स्टेज पर लेकर आए। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीफ गेस्ट ठीक है, कभी पुलिस, कभी कभी हथकड़ी तो कभी माला। तो यहां पर फिर उन्हें उनका स्वागत किया गया और भगत हुई उनकी। और फिर वो ऑर्गेनाइजर ने बुक डिस्ट्रीब्यूटर को पूछा, वो हालांकि किसी और की प्रतीक्षा में थे और कोई जानता नहीं था कि चीफ गेस्ट कौन आने वाला है, और वो प्रतीक्षा में जैसे ये अंदर आए अपना बुक बैग वगैरह सब लेकर, तो ये समझ गए, इनको लगा कि यही चीफ गेस्ट हैं और जो भेंट हम देने वाले हैं, जो ऑडियंस में किसी को भेंट देना था, जैसे हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी किए वैसे। तो उन्होंने पूछा कि आप सबके लिए प्राइजेस लाए ना, क्योंकि उनके कोई सेक्रेटरी प्राइजेस उनके चीफ गेस्ट के साथ ही देने वाले थे। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर कहे, हाँ लाए हो ना, अपना बुक बैग दिखाया, बोले लाए हो सबके लिए प्राइजेस। तो उनके पास 60 भगवद गीता थी वो बुक में, वो बैग में। तो ऑर्गेनाइजर ने पूछा, कितना आप लाए, बोले 60। इतना नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा ही लेके आ गया, आप बांट सकते हैं। थोड़ा और किसी को भी आप देखें देखने, तो इनको पता नहीं कि ये किसके बारे में क्यों, कौन सा प्राइज और कौन चीफ गेस्ट। तो अब ये ऑर्गेनाइजर एक एक कर कर बुला रहे हैं स्टेज पर, और ये वहां पर स्टेज पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, और वो पुलिस भी बैठे देख रहा है। और इन्होंने जितने लिस्ट में नाम थे करीब 35 से 40, उन सबको 35-40 भगवत गीता का वितरण करा, श्रीमान गौरांग महाप्रभु की। और ये उन्होंने कहा कि जब वो भाग रहे थे तब वो केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे। वो पुलिस जब पीछे भाग रहा था तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे। कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत, ये श्लोक कि स्मरण करने से जो सबसे दुष्कर स्थिति थी वो इस प्रकार में परिणित हुई। ये कहानी यहां पर नहीं समाप्त हुई है। सबको भगवत गीता वहां पर बांटने के पश्चात वो पुलिस ने क्षमा मांगी कि क्षमा करना, मैं जानता नहीं था कि आप यहां के चीफ गेस्ट। तो ये बाहर निकले और कहे ठीक है चलेगा। और फिर पुलिस जब चले गए तो फिर वो वहां के जो जो उस हॉल के इंचार्ज थे ऑडिटोरियम के, उसको जाके पूछा कि ये क्या हो रहा था यहां पे। तो आप तो चीफ गेस्ट, आपको पता नहीं? मैं ये सब, मैं केवल आता हूं चीफ गेस्ट के रूप में, मैं ऐसा जानकारी नहीं निकाल। क्या क्या हो क्या रहा था? तो वो क्या हो रहा था, वो बुचर्स एसोसिएशन का कन्वेंशन चल रहा था, कसाई थे सारे बैठे वहां पे, कसाईयों के एसोसिएशन का गेट टुगेदर था। तो सोचिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा किनको मिली, उन कसाईयों को उस देश के। इसे कहते हैं परम करुणा, कि वही श्री कृष्ण के करुणा के सिंधु को श्री चैतन्य महाप्रभु बादल में लाकर यहां तक बांट रहे हैं। तो दुष्करम सुकरम भवेत, इसलिए हमारे जीवन में भी जब भी कोई दुष्कर स्थिति आए तो हमें क्या करना है, तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण इतना विशेष है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्मरण के साथ साथ अपना संदेश, अपनी कृपा हमें दे रहे हैं, जो कि हम दूसरों को भी उनके स्मरण में ला सकें। और जब हम दूसरों को उनके स्मरण में लाएंगे, जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के हृदय को परिवर्तित किया चतुरता से, श्रील प्रभुपाद ने कैसे चतुरता से कृष्ण, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो प्रसादम है हमारा सीक्रेट वेपन है, ये हमारा शस्त्र है परंतु बहुत ही गुह्य शस्त्र है। और कल हमने इसके उदाहरण लिए कि हमारे एक सन्यासी वो केक बांटते थे, कहते थे मेरी पत्नी का बर्थडे है। जयानंद प्रभु वो एक बार मंदिर की गाड़ी ठीक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग रास्ते पे चलते फिरते ऐसे ही जा रहे थे मंदिर के सामने। तो वो सोचे कि ये केवल चलते फिरते जा रहे हैं, कुछ सेवा नहीं करते। तो वो गाड़ी से नीचे बुलाए, हेलो भाई साहब, वो थोड़ा पाना देंगे? तो जयानंद प्रभु इस प्रकार के भक्त थे कि वो जब किसी से बात करना शुरू करे तो व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता। तो वो पाना देने के लिए वो नीचे झुकता, तो जयानंद प्रभु ने कहा कि थोड़ा और अंदर आएंगे, ये थोड़ा नट खोलोगे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तो उसे नट खोलने में लगा दिया, और फिर आप कहां से हो, क्या हो, और फिर धीरे धीरे कभी मंदिर में आए। वो नट खोल रहा है, ये नहीं जानता कि उसके कर्म बंधन का सारा नट खोला जा रहा है। और जयानंद प्रभु ऐसे कितने व्यक्तियों को हाथ में पाना थमाए, उसके बाद में बीडबैग थमाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है ये इतना विशेष है, जैसे हम आज सुबह महाविष्णु महाराज के मुखारविंद से सुन रहे थे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा सौभाग्य क्या है कि हम भारत में जन्मे, वो भी वैदिक परिवारों में, और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संप्रदाय के संपर्क में आए। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या खजाना हमारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु छोड़ के गए। एक इसके संदर्भ में एक कथा मुझे याद आ रही है कि एक व्यक्ति वो एक मेले में गया, और वो मेला ऐसा था कि मेले के पश्चात एक बहुत बड़े टेंट में बहुत से व्यक्ति रुके हुए थे। तो ये व्यक्ति के पास कुछ रकम, कुछ पैसे थे, और इसे रात में वहीं पर रुकना था, यात्रा या जत्रा जिसे कहते हैं उस प्रकार का था। तो उसके पश्चात रात का बसेरा, और उसके पश्चात उसे आगे निकलना था अपनी यात्रा में, और इसके पास कुछ पैसे थे। तो इसे समझ में आया कि ये इतने बड़े टेंट में मुझे रहना है, और मेरे जो बगल में कोई व्यक्ति आए, यदि वो चोर निकले तो ये मेरा पूरा पैसा चुरा कर ले जाएगा। और हुआ ये ही कि उसके बगल में जो सोने वाला था वो एक चोर ही था। तो ये चोर ने पहचान लिया कि इस व्यक्ति के पास, इस यात्री के पास कुछ धन है। तो रात्रि में वो खोजबीन करने, चोरी करने के लिए शुरू किया अपना, परंतु कुछ मिला नहीं उसे। हालांकि बहुत रकम थी उसके पास, परंतु कुछ नहीं मिला। तो परेशान होकर सुबह जब उठा तो उसने पूछा, कहां छुपाई थी रकम बताओ। दोनों जानते थे कि है पैसा, लेकिन ये चोर नहीं पहचान पाया कि कहां पर। तो इस यात्री ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे ही तकिए के नीचे रखा था। तो इसका सिद्धांत क्या समझ में आता है कि उस चोर के ही तकिए के नीचे सारा पैसा था, और वो सारे गली भर घूम रहा था। वैसे ही हमारे ही हृदय में कृष्ण प्रेम है, और हम घूमते फिरते यहां वहां कलयुग में कि कहां मुझे आनंद मिलेगा, कहां मुझे इस संसार का प्रेम मिलेगा। असली कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में ही, वही श्री चैतन्य महाप्रभु आके हमें बताए हैं कि जैसे उस चोर को उस यात्री ने बताया तुम्हारे ही तकिए के नीचे, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु बताए हमारे ही हृदयों के अंदर है वो कृष्ण प्रेम। इसलिए हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से यही प्रार्थना आज करेंगे कि जैसे आप सिंह रूप में आए और हमारी अंधेरी कंदरा में प्रवेश कर इसे दैदीप्यमान बनाया है, तो आपकी कृपा से ये जो अंधेरी गुफा मेरी है ये दैदीप्यमान बनी रहे। एक व्यक्ति हाल ही में मुझे ये प्रश्न पूछ रहा था कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी योग्यता हमें लानी है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को पूर्ण रूपेण उतार सकें हमारे जीवन में। तो मुझे एक उदाहरण ध्यान में आया, एक छोटा सा बालक है, उसे लॉलीपॉप खाना है, तो न तो उसके पास पैसे हैं, न वह जानता है कि कौन सी दुकान में लॉलीपॉप मिलती है, न वो दुकान तक पहुंच पाएगा, यदि पहुंच भी पाया तो वो काउंटर तक भी नहीं पहुंच पाएगा, और वो क्या बोलने के भी लायक नहीं, छोटा सा बालक, लेकिन उसे खाना है लॉलीपॉप। तो वो बालक उस लॉलीपॉप को खाने के लिए करता क्या है, खाली रोता है, खाली रोता है। और वो रोता है और उसके रोने से उसके पिताजी पैसा खर्चा करके जाते हैं दुकान में, दुकान वाले को बोलते हैं कि भाई ये वाला लॉलीपॉप दो, वो लॉलीपॉप का वो रैपर निकाल कर फिर उस बच्चे को लाकर देते हैं। तो बाकी सब वो पिताजी ने सब कुछ किया, पैसे पिताजी के, श्रम पिताजी का, लॉलीपॉप किसे मिला, किया क्या उसने, खाली रोया। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हम भी उस बालक के समान हैं, हमारे अंदर कोई क्षमता योग्यता नहीं है वो कृष्ण प्रेम का लॉलीपॉप खाने की, हमें करना क्या है, केवल रोना है। और ये सारे जो आचार्य हैं परंपरा के और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि वो सब लॉलीपॉप खरीद के रखे हुए हैं, केवल वो प्रतीक्षा में है कब ये कलयुग के निवासी रोएंगे। रोने का अर्थ क्या है, जैसे आज सुबह हमने सुना, हमारा हृदय द्रवित जब होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा शुड बी लाइक द हेल्पलेस क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर इट्स मदर। तो यदि हम उस भावना में हृदय को द्रवित करते हुए, उस द्रवित हृदय से यदि हम रोते हुए भगवान श्री कृष्ण का ये नाम उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें वो सब कुछ जो हमारी क्षमता योग्यता के बाहर है वो मिल जाएगा। और अंततः आज के इस गौर पूर्णिमा महोत्सव में हम यही संदेश हम सबके हृदयों में कानों में भर कर रखना चाहेंगे कि हम ये तीन प्रश्न पूछें। ध्यान में रहिए, ये तीन प्रश्न यदि हम अपने आप से पूछें कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने से पहले मैं क्या था, सबसे पहला प्रश्न, मेरी दशा क्या थी। दूसरा प्रश्न, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा ग्रहण करने के पश्चात मैं क्या बन गया। तीसरा प्रश्न, श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण और कृपा यदि मैं अपने जीवन में अपनाता रहूं तो क्या बन सकता हूं। तो ये तीन प्रश्न ध्यान रहेंगे, ये इस वर्ष के गौर पूर्णिमा के तीन प्रश्न, मैं क्या था, मैं क्या उनकी कृपा से बन गया, और मैं क्या उनकी कृपा से बन सकता हूं। क्या हम बन सकते हैं, शुद्ध भक्त। तो यदि ये तीन प्रश्न हम अपने जीवन में अपने हृदय में उतार लें तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कभी नहीं छोड़ेंगे। श्रीमान गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।